जी उमेर साहब, वी आर लाइव अगेन। देखिए, जैसे जैसे वर्ल्ड कप करीब आता जा रहा है, क्रिकेट की दुनिया में बहुत सारी तेज़ी आती जा रही है, बहुत सारे मैचेस हो रहे हैं, बहुत सारी सीरीज़ हो रही हैं, प्रैक्टिस मैचेस भी हो रहे हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मैच हुआ, हमने देखा पाकिस्तान जीत गया, लेकिन उस जीत पर डिस्कस करेंगे कि क्या हम उससे खुश हैं, क्या हम उससे नाखुश हैं। फिर पाकिस्तान का अब न्यूजीलैंड के साथ फाइनल भी होना है, उस पर भी बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन क्या हो सकती है और क्या चेंजेस और मजीद हम कर सकते हैं अपने वर्ल्ड कप से पहले। फिर देखिए, हमारी लड़कियों के साथ बड़ा बैड सीन हो गया कि मतलब वो सेमीफाइनल एशिया कप की 1 रन से बेचारी हार गई, तो उन पर भी ज़रा बात करेंगे कि क्या बेहतरी कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे। और इंडिया भी सर हार गया है प्रैक्टिस मैच अपना वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया
बिल्कुल
से,
ऐसा ही है।
तो उस पर भी थोड़ी बहस करेंगे। लेकिन सबसे पहले उमेर साहब, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, आर यू सेटिस्फाइड और आर यू अनसेटिस्फाइड?
यार पाकिस्तान और बांग्लादेश का जिस तरह मैच हुआ है आज के दिन, उससे मैं आप समझे कि 70-80% मैं सेटिस्फाई हूँ। जिस तरह वही हम बातें करते थे पहले कि यार बाबर आजम थोड़ा रिजिड हो जाते हैं अपनी लाइनअप को लेके, वो चीज़ हमें आज के मैच में नज़र नहीं आई। जिस तरह हमने देखा कि 11वां ओवर हो गया था, बाबर आउट होता है तो शुक्र है शान मसूद नहीं आते, हैदर अली आते हैं। ऑल्दो वो उस तरह परफॉर्म नहीं करते, लेकिन एक अच्छी चीज़ नज़र आई कि यार वर्ल्ड कप से पहले बाबर आजम ने इस चीज़ को यूटिलाइज थोड़ा सा, मतलब वो कर लिया, ये चीज़ को रियलाइज कर लिया ना इस पॉइंट को। फिर उसके अलावा अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो ऑल्दो आज के दिन नवाज थोड़े से एक्सपेंसिव रहे, लेकिन वही बात है आप वाली के आपके क्रिकेट में कभी अच्छे दिन भी आते हैं, कभी बुरे दिन भी आते हैं। बैक करना चाहिए बॉलर्स को, तो मैं बैक करूंगा, मतलब अच्छा रहा बॉलर्स का सीन भी। थोड़े से स्नैर उस पर एक्सपेंसिव थे। बाकी अगर उसके अलावा बात करें जो कि एक कंसर्न है, मोहम्मद रिजवान का है, उनका जिस तरह उन्होंने जिस तरह खेला है आज के दिन, तो अगर ये इस तरह खेलते रहे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में, तो मेरे ख्याल में काफी एक अजीब हालात हो जाएंगे पाकिस्तान के। तो क्या कहते हैं आप इस बारे में?
बिल्कुल यार, रिजवान की देखो, हमने देखा था एशिया कप के फाइनल में एक बड़ी अजीब सी इनिंग्स थी, उसके बाद हमने देखा कि इंग्लैंड वाली सीरीज़ में काफ़ी इंप्रूवमेंट नज़र आई कि वहाँ पर इन्होंने अपनी स्ट्राइक रेट को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की और शुरू में चांस लेने की कोशिश भी की, उसमें वो एक आध दफ़ा जल्दी आउट भी हुए, लेकिन सारे ये कह रहे थे कि चलो रिजवान कोशिश कर रहा है। अभी फिर ये जो इनिंग्स खेली है इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ, तो इस इनिंग्स की कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मतलब ही वॉज गोइंग नो वेयर, वो फंसे हुए खेल रहे थे और अजीब सी मतलब लग रही थी। बाबर भी बड़ा अंडर प्रेशर था उसकी वजह से, और शायद बाबर जो आउट हुए उसमें भी कंट्रीब्यूशन यही थी कि रिजवान से लग नहीं रही थी, तो बाबर को लग रहा था मुझे अब चांस लेना पड़ेगा, अदरवाइज इट वुड बी टू लेट। हैविंग सेड दैट, जो भी जिस तरीके से भी पाकिस्तान खेला बैटिंग करते हुए, एक स्टेज ऐसा था जैसे 12 ओवरों में आई थिंक पाकिस्तान की 100 हो गई थी, तो
बिल्कुल
उधर से आगे मैच आई थिंक लास्ट ओवर और सेकेंड लास्ट बॉल तक जाना चाहिए नहीं था, तो उस पर भी हम अभी आगे मैं बात करूंगा कि क्या हम बेहतर कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे। लेकिन आपने जो एक बात की ना, जो मेरे लिए भी एक सेटिस्फैक्ट्री पॉइंट था कि बैटिंग ऑर्डर पाकिस्तान ने अपना चेंज किया है और वो नवाज़ और शादाब को अब यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इवन हैदर को भी ऊपर भेजना जिस तरह आपने पॉइंट आउट किया, और आई थिंक वो बहुत एक पॉजिटिव डिसीजन था जो हमें ना एशिया कप में देखने को मिला और ना इंग्लैंड सीरीज में देखने को मिला, तो वो तो पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है।
बिल्कुल बिल्कुल यार सही बात करें जो रिजवान की आपने बात की। जिस तरह बाबर आजम भी उन्हीं की वजह से आउट हो एक तरह से देखा जाए, तो इसमें जलाल एक और फैक्ट जो मैं ऐड करूंगा, जिस तरह मेरे सामने खुला हुआ है स्टैट्स, तो ये जो मोहम्मद रिजवान है, इन्होंने 56 बॉल्स खेली और 4 चौके मारे, ठीक है। और बाबर आजम ऑन द अदर हैंड 40 बॉल्स खेलते हैं और 7 चौके मारते हैं, 9 चौके मारते हैं। तो आप देख रहे कितना बड़ा गैप है, और अगर इस तरह का इंटेंट ये शो करते हैं मोहम्मद रिजवान आगे वर्ल्ड कप में, तो ये काफी ज्यादा एक इशू हो जाएगा मेरे ख्याल में अगर वो इस तरह खेलते रहे। अभी तो बाबर आजम ने प्रेशर लिया, आउट हो गए, सामने टीम भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, ठीक है। तो अगर अगर ये इसी तरह खेलते रहे तो मेरे ख्याल में काफी इशू आ जाएगा वर्ल्ड कप में अगले मैचेस में।
बिल्कुल आ सकता है यार इशू, लेकिन अब एज अ पेयर इनका रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, तो बाबर आजम और रिजवान की आई थिंक 8th पार्टनरशिप थी 100 रन इन ओवर की और 100 रन की, हाँ, और उसके
बिल्कुल
बाद 1000 रन आई थिंक इन दोनों ने पेयर्स ने बना लिए वाइल चेजिंग, तो ये पहले पेयर बन चुके हैं T20 हिस्ट्री के जिन्होंने चेजिंग में ये वाला रिकॉर्ड बनाया है। और भी एक आध रिकॉर्ड है उमेर
बिल्कुल
साहब, ये ओवरऑल कितने पार्टनरशिप के इनके रन हो गए?
यार बिल्कुल, इन्होंने ऑलमोस्ट 44 इनिंग्स खेली है, ठीक है। उसमें इनके स्कोर है 2284,
ओ तेरी
और
खैर।
साथ साथ जो इन्होंने हाईएस्ट स्कोर मारा है वो 203 है। तो ये इनका एक स्टैट है। और आपको मजे की बात बताऊं, सेकंड पे जो जो सा पेयर है वो है राहुल है और शर्मा है। उन्होंने मारा है, उन्होंने 36 इनिंग्स खेली है और उनका स्कोर है 1806। तो अच्छी बात है, थोड़ा सा पॉजिटिव है कि यार चलो पाकिस्तान के पेयर्स टॉप पे हैं। हम लोग पहले कभी नहीं देखते थे कि यार ओडीआई में टेस्ट में इस तरह पेयर्स ऊपर आ रहे। लेकिन थोड़ा सा इशू है जलाल साहब, वो इंटेंट का है। वो इंटेंट मेरे ख्याल में काफी जरूरी है इन लोगों को बोला, जो कि मतलब जो इंटेंट है उसको उसको यहाँ पे यूटिलाइज करना चाहिए पाकिस्तानी प्लेयर्स को। तो
नहीं
ये
नहीं
सही है।
बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो कि एटलीस्ट रन्स तो आ रहे हैं ना। अब बात सारी ये हो रही है कि उससे हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, रन्स कैसे हम ज़्यादा पेस पर बना सकते हैं, उतनी बात हो रही है। लेकिन बाबर और रिजवान एज ए पेयर के लिए हम क्रिटिसाइज बहुत करते रहते हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन इस रिकॉर्ड के लिए सर अप्लॉज तो बनती
बिल्कुल बनती है सर, बिल्कुल बनती है,
है?
बिल्कुल बनती है। यार वही बात है जलाल, हर कोई इनके बारे में क्रिटिसाइज करता रहता है। इवन अभी भी हालांकि रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, आप T20 रैंकिंग देखें, ये जो बाबर है वो आपका थर्ड पे है, रिजवान फर्स्ट पे है, लेकिन फिर भी हर कोई ज्यादा फेवरेबल इसी बात पे है कि यार बाबर आजम वन डाउन आए और मोहम्मद रिजवान के साथ एक कोई स्ट्राइकर आए। और आपको याद होगा कि मोइन अली जब ये लोग सेकंड मैच जीते थे पाकिस्तान जिसमें 200 रन चेस किया था, उसमें भी मोइन अली ने मेंशन किया था कि यार हम लोग इतना ज्यादा प्रेशर में नहीं आ रहे थे शुरू में, कि बाबर और रिजवान मतलब अगर ये खड़े रहे तो कुछ मतलब कि कुछ वो रिजल्ट हमारे अगेंस्ट हो जाएगा। तो वो भी काफी एक था पॉइंट
यार लेकिन ये देखो ना कि जो भी बोले इनको, जैसे भी हमने भी क्रिटिसाइज किया, हमने भी मैंने भी इस पॉइंट ऑफ व्यू का था कि बाबर आजम को वन डाउन पे बैटिंग करनी चाहिए टीम की, फॉर द सेक ऑफ द टीम। लेकिन अब तो वो नहीं हो रहा नजर आ रहा, तो अब जो भी टीम है हम उसको वर्ल्ड कप के लिए बैक करेंगे, और जो भी
बिल्कुल।
फिर वर्ल्ड कप में रिजल्ट आते हैं उसके हिसाब से ऑब्वियसली ये इनको जज किया जाएगा। लेकिन बाबर आजम की तारीफ ये करनी होगी कि यार वाइल्ड चेजिंग वो 13-50 कर चुका है T20Is में, और सिर्फ एक ऐसी 50 है उसकी जिसमें पाकिस्तान हारा है। तो ये एक जो टैग अक्सर हम लोग लगा देते हैं ना कि बाबर बैटिंग करता है बड़ा स्लो करता है, ठीक है वो जैसे भी करता है, लेकिन इनसेन किस्म का ये उसका चेजिंग का रिकॉर्ड है। मतलब आप इसको विराट कोहली के साथ ही एक कंपैरिजन कर सकते हो कि चेजिंग में मैच जिताना। तो अक्सर टैग बाबर के साथ ही लगता है, बाबर मैच फिनिश नहीं करता या बाबर मैच नहीं जितवाता, मैच विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होती, लेकिन ये गलत स्टिग्मा है। बाबर के जो भी रन होते हैं वो मैच विनिंग रन होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ कमेंट लेते हैं उमेर, क्या
बिल्कुल
कहते हो
सही है,
आप?
बिल्कुल लेते स्टार्ट करें।
अच्छा जी, तो कमेंट में सबसे पहले तो हमारे यूजुअल आए हैं क्रिकेट फीवर साहब, वो सलाम कह रहे हैं। वालेकुम
वालेकुम
अस्सलाम
अस्सलाम।
सर जी, क्या हाल है आपका? वुडू पाक साहब कहते हैं ब्रोज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वुडू
वालेकुम
पाक।
अस्सलाम ब्रो, क्या हाल चाल है आपके?
SS98 भाई भी आ गए हैं, कहते हैं ऑन अ लाइटर नोट, अकॉर्डिंग टू रमीज राजा, इवन इफ पाकिस्तान वीमेन लॉस्ट द सेमीफाइनल बट देवर एबल टू बीट द मल्टी डॉलर इंडिया, सो ऑल इज वेल। आनी ये बात तो आपने अच्छा पॉइंट रेस किया है। बिल्कुल यार देखो, सिर्फ इंडिया को हराना इज इन इट सेल्फ इज एन अचीवमेंट। वो रमीज राजा एक तरीके से बात ठीक कर रहे हैं कि पाकिस्तानी वेमेन क्रिकेट खास तौर पे पर्टिकुलरली, और जनरली पाकिस्तान की मेंस टीम भी, जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं और जिस कंपैरिजन अगर उनका किया जाए इंडिया की टीम के साथ, तो वो तो बहुत थोड़ी हैं। ठीक है, उधर से फिर भी कॉम्पिटिशन करना वो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये कोई अचीवमेंट नहीं होनी चाहिए कि हम इंडिया को हरा के खुश हो जाएं और फिर टूर्नामेंट से बाहर हो जाएं। तो ये बात आपने अच्छी की है, इससे इस पे कोई दो राय नहीं है।
यार बिल्कुल, इसमें बस ये भी एड ऑन करूंगा कि हम लोग जैसे लास्ट वीडियोस भी हमने कुछ बनाई जिसमें हम लोगों ने बातें की कि यार पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट इतनी स्ट्रांग नहीं है, मतलब इस तरह इतना उनके पास एक्सपोजर नहीं है, इतने अच्छे कोचेज नहीं है उनके पास। तो वो वाली अगर सारी कंडीशंस अगर हम अपने माइंड में रखें सब चीजें, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने अच्छा खेला है, ठीक खेला है एशिया कप में, जो वुमेन क्रिकेट है
हाँ,
उनको थोड़ा ज्यादा
इनकंसिस्टेंसी
इंटरेस्ट।
है। मैच ये वाला जीतना चाहिए था, अगर हम इस पे थोड़ी सी, अब क्योंकि SS98 भाई ने बात कर दी है, ये मैच जीतना चाहिए था। टारगेट पाकिस्तान ऑन ट्रैक था, खास तौर पे शुरू में मुनीबा ने, आई थिंक मुनीबा ही है ना ओपनर हमारी,
मुनीबा
उन्होंने
किंग चौके
अच्छी
मुनीबा।
अच्छा स्टार्ट, ब्रिस्क स्टार्ट दे दिया था। 3 ओवरों में 30 odd रन थे हमारे, वहां से आके मैच फंसना, आखिरी ओवर तक लेके जाना, वो ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग होगा और हार्ट ब्रेकिंग भी है ऑब्वियसली पाकिस्तानी फैंस के लिए भी, पाकिस्तान वेमेन क्रिकेट फैंस के लिए खास तौर पे, और सबसे बढ़कर वेमेन क्रिकेट टीम के लिए कि उन्होंने इंडिया को भी हराया और थाईलैंड के हारने के बाद कैरेक्टर शो किया, कम बैक किया, फाइट बैक की. और फिर देखो श्रीलंका ऑफ लेट हमें मेंस क्रिकेट में भी स्ट्रगल दे रहा है और वेमेन क्रिकेट में भी अब स्ट्रगल दे दी उसने. उमैर मतलब मैं याद कर रहा हूँ
यार
ये वो टीम थी जो हमसे नीचे थोड़ी दबके खेलती थी हमेशा. और वर्ल्ड कप में तो खास पे आई डोंट रिमेम्बर कि श्रीलंका ने हमें मैचेस हराए हों, लेकिन आपको याद होगा जब बाबर नया नया कप्तान बना था तो नई श्रीलंका की टीम आई थी जो उस टाइम के ऊपर श्रीलंका बी टीम थी, और अब वही वाले लड़के या आप खेल रहे हैं. उस टाइम भी उन्होंने हमें सीरीज हरा दी थी. फिर याद होगा आपको कि पाकिस्तान यूएई में कभी हारा नहीं था टेस्ट मैच, ये पहली टीम बनी थी जिसने आगे यूएई में हमें टेस्ट मैच भी हरा दिया था, और अब एशिया कप में भी इन्होंने
यार
हमें अपसेट कर दिया. तो ये अभी ऑफ लेट श्रीलंका का पलड़ा भारी है हमारे ऊपर.
यार बिल्कुल, श्रीलंका कभी कभार ऐसे अपसेट दे देता है, बल्कि हम लोग तो पहले भी देख रहे हैं, जिस ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने हराया था टेस्ट मैच भी और T20 भी, वो भी काफी अनएक्सपेक्टेड था, तो एशिया कप में भी हमने देखा यही चीज। और बाकी लेकिन श्रीलंका की जो बॉलिंग है ना जलाल, जो वुमेन क्रिकेट की है, वो मुझे काफी अच्छी लगी है। मतलब कि आपने अगर थाईलैंड वाला मैच जो था जिसपे 37 पे ऑल आउट किया था इन्होंने, आई थिंक वो यही टीम थी, वो इनके अगेंस्ट ही था, तो वो
इंडिया इंडिया ने
इनकी
नहीं किया
बॉलिंग
था आई
काफी
थिंक, वो डबल चेक कर लो. वैसे
यार
आई डोंट थिंक कि वो श्रीलंका के अगेंस्ट किया था, आई थिंक वो इंडिया थी. बट
इंडिया वर्सेस साइलेंट था, लेकिन खैर श्रीलंका की बॉलिंग काफी अच्छी है वुमेन क्रिकेट में, तो वो एक इनको एज दे देती है। और पाकिस्तान जीत सकता था, पाकिस्तान को स्टार्ट हुई बात है 50 रन अच्छे पड़ गए थे 7 ओवरों में, तो लेकिन उसके बाद वही बात है, जब इनकी विकेट्स गिरी आखिर में जो रन आउट हुई है निदा यासिर, तो उसके बाद
निदा
से
डार.
काफी निदा डार, तो उसके बाद से काफी इशू हुआ है,
हाँ
तो
नहीं ये
ये
बात
सीन है।
ठीक है, थोड़ा स्लो खेले हैं यार, हमारी कैप्टन भी थोड़ा स्लो खेली है. ये 120 का टारगेट 1-2 ओवर पहले 2 ओवर पहले खत्म हो सकता था. बट एनीवेज यार हम बैक करेंगे लड़कियों को, अभी अभी अच्छे रिजल्ट्स भी देती हैं, नेगेटिव रिजल्ट्स भी आते हैं, लेकिन ऑब्वियसली इंशाल्लाह फ्यूचर में जब ये लीग जो हमारी अब अगले साल स्टार्ट होगी,
हाँ
अगर 2-3 साल इसको होते हैं, तो आई होप कि ज़्यादा लड़कियां भी, पूल उनका बड़ा होगा और पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, तो कॉन्फिडेंस भी ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा. लेकिन उमेर साहब
बाकी जल आप बोले फिर मैं बात
कमिंग बैक टू
करता
द ट्राई
हूँ।
सीरीज, आपकी पाकिस्तान
हाँ
वर्सेस बांग्लादेश वाले मैच में जो बहुत ज़्यादा पॉइंट रेज हो रहा है, वो रेज हो रहा है कि मोहम्मद रिजवान को मैन ऑफ द मैच मिला, प्लेयर ऑफ द मैच का
हाँ
अवार्ड मिला. हमने देखा वो थ्रू आउट द अपनी इनिंग स्ट्रगल भी करते रहे, उनका कैच भी बहुत आसान एक ड्रॉप हुआ फाइन लेग के ऊपर, और मैच फिनिश भी नहीं कर पाए बल्कि थोड़ा सा फंसा के चले गए सौम्या सरकार का, वो जो पार्ट टाइम बॉलर है. तो क्या बोलोगे, प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिलना चाहिए था?
यार जाहिर है उस पे तो जो प्लेयर ऑफ द मैच है वो आपको वही बनता था, मोहम्मद नवाज। जिस तरह उसने गेम चलाई, जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा था, आपके जब लास्ट 6 ओवर रह गए थे, तो ऑलमोस्ट 67 रन चाहिए थे, तो वहां पे अगर रिजवान होता तो मेरे ख्याल से स्कोर ना हो सकता होता। तो जो मेजर इम्पैक्ट था गेम में वो था मोहम्मद नवाज का, तो जो मैन ऑफ द मैच है उसी का बनता था। और बेचारे के साथ हमेशा थोड़ी हार्ड लक हो जाती है, आपको इंडिया वाला मैच भी याद होगा, इंडिया वाले मैच पे भी इसी ने गेम को थोड़ा सा वो बदला था, लेकिन वहां भी इसको मैन ऑफ द मैच नहीं मिला था। और लेकिन वही बात है कि जो डिजर्विंग था वो यही था, मोहम्मद नवाज था, इसको मिलना चाहिए था मैन ऑफ द मैच।
देखो नवाज की बॉलिंग बड़ी मीडियोकर रही पूरे मैच में, हालांकि नॉर्मली वो बड़े एक्यूरेट होते हैं और लाइन और लेंथ उनकी बड़ी अच्छी होती है. इस मैच में उन्होंने थोड़ी शॉर्ट बॉलें भी कराई और शकीब ने उनको मारा भी, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज जब बॉलिंग में नवाज कर रहे थे तो देखने में लग रहा था कि वो अपने आप पे बहुत उनको गुस्सा है और डिसअपॉइंटेड हैं. तो वो उन्होंने गुस्सा निकाला आगे अपनी बैटिंग में और शकीब को भी उन्होंने धोया. लेकिन जो हमारी बॉलिंग पे अगर आप आएँ तो हसनैन हमने देखा है, हम बात भी करते आए हैं, काफ़ी इनकंसिस्टेंट है. कुछ पैचेस में तो वो बहुत ही ब्रिलियंट बॉलिंग करा देता है लेकिन उसको रन्स भी पड़ जाते हैं. तो अब उस पर क्या बोलोगे, बाबर ने यूटिलाइज तो अच्छी करने की कोशिश की, डेथ में उसको उस तरह ओवर इस दफा कम दिए हैं उसने.
नहीं दिया यार, बिल्कुल हसनैन का वही इशू है, जो कि मतलब जो स्टार्ट का ओवर होता है वो उसका बहुत अच्छा होता है, उसपे वहां पे हमें वेरिएशन भी नजर आ रही होती है, उसकी सीम भी हो रही होती है, काफी अच्छी बॉल होती है उसकी, लेकिन जब आखिरी ओवर्स में आता है, जब 10 ओवरों के बाद आता है, तो वहां पे उसका काफी स्ट्रगल हो जाता है, तो ये एक इशू है, कंसर्निंग है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर ऑस्ट्रेलिया में इसको चांस मिलता है तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है वहां पे, एज अ फोर्थ, एज अ थर्ड सीमर, अगर कोई वहां पे इंजर्ड होता है, नसीम या
हाँ
क्या
बैकअप
कहता है
बैकअप
आप?
पे ही देख रहे हैं अभी हम तो. मेन
बैकअप
आप
बैकअप पे
अभी
बिल्कुल
मेन तीन आप वही देख रहे हो, प्रोवाइडेड अल्लाह करे शाहीन फिट हो जाए, शाहीन, हारिस और नसीम, यही मेन तीन आप देख रहे हो अभी.
हाँ, ये तीन ही मेन है, बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है चलो, ये तो
और
बात,
फोर्थ, अगर फोर्थ का सीन बनता है तो वसीम आ जाए।
हाँ वसीम आ जाए, वो उस पर भी हम बात करेंगे, काफी हम बात करते रहे हैं उस पर। अच्छा लिटन दास बहुत अच्छा खेले,
कमाल,
शकीब बहुत अच्छा
बहुत
खेले,
कमाल।
क्लासी बैट्समैन तो लिटन दास हैं ही हैं, वो तो हमें पता है, वो टेस्ट मैच के लेवल पर भी प्रूफ कर चुके हैं, ओडीआईज में भी प्रूफ कर चुके हैं। अच्छा अब शान मसूद पे मैं लिटन दास से आना चाह रहा हूँ, क्योंकि शान मसूद क्या बैटिंग में भी हम देख रहे हैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, फील्डिंग में उनसे कैचेस भी ड्रॉप हुए हैं, फिर एक फील्ड करते हुए वो अपने जूते के लेसेस बांध रहे थे तो भागते हुए नंगे पैर वो फील्डिंग कर रहे थे, और फिर लिटन दास का बड़ा आसान कैच भी उन्होंने ड्रॉप कर दिया, तो अंडर कॉन्फिडेंट तो लग रहे हैं, जिस तरह आप शुरू से कह रहे हो पहले दिन से कि शान थोड़े
बिल्कुल
अंडर
बिल्कुल।
कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, क्या ख्याल है?
यार हाँ, वो थोड़े हैं अंडर कॉन्फिडेंट मेरे ख्याल में। शायद वही बात है कि पहले ये है एक टॉप ऑर्डर और फिर वन डाउन आते हैं, तो उस तरह शायद एक अपनी गेम नेचुरल नहीं कर सक रहे, जो उनका नेचुरल स्टाइल है वहां पे काफी ज्यादा लैक उनका नजर आ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो बाबर आजम है, इवन जो मैनेजमेंट है, वो इसको बैक करेगी, क्योंकि इन लोगों ने वो रखा है, एज अ ऑप्शन रखा है कि अगर बाबर और रिजवान में से कोई आउट हो जाता है शुरू में, तो फिर शान मसूद आ जाए जो कि इनिंग को बिल्ड करे। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में इसकी जगह उस तरह बनती है। जैसे आज के मैच में हमने देखा उसको चांस नहीं मिला, वो अच्छा हुआ, लेकिन लेट्स सपोज अगर शुरू में विकेट गिर जाती बाबर की या रिजवान की, तो वहां पर शान मसूद एक वाइटल रोल अपना प्ले कर सकते हैं।
हाँ आई डोंट रिमेम्बर कि वो कौन से न्यूजीलैंड के कमेंटेटर थे, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेज किया था कि शान मसूद पाकिस्तान की एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो इस तरह कि अगर आपके बाबर आजम और रिजवान में से कोई जल्दी आउट होता है तो आप शान को भेज दो, अगर ये लेट आउट होते हैं, जिससे हम पहले भी अपनी एपिसोड में बात कर
पहले भी
चुके हैं,
हमने
तो
बात
आप
की
शान को मत भेजो, खास तौर पे अगर आपकी 10 ओवर्स के बाद विकेट गिरती है। तो वो अच्छा
बिल्कुल।
किया हैदर अली को, आगे हैदर अली को भेजा, लेकिन हैदर अली थोड़ा सा अनलकी, मैं ये बोलूंगा उसका बहुत प्यारा यॉर्कर पड़ गया, इंटेंट तो हैदर अली की बॉल वन से यही लग रही थी कि वो मारने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद वो बोल्ड भी इस वजह से हुए क्योंकि वो शॉट मारने की तरफ गए, अगर वो शायद ब्लॉक करने की कोशिश करते तो वो यॉर्कर बचा जाते। वुडू पाक भाई कहते हैं कि मैच बहुत आगे तक लेकर गए हैं, पाकिस्तान ज़्यादा एग्रेसिव नहीं खेला। बिल्कुल सर,
यार
पाकिस्तान का
बात
एक
सही है,
अपना
बात
तरीकेकार है
सही है।
खेलने
मतलब
का।
देखे ना, पाकिस्तान का ये इशू है, जहां पे अगर लेट्स सपोज 140 भी चेस करना हो, तब भी ये लोग आखिरी ओवर में जाके चेस करेंगे। 180 चेस करना है तब भी आखिरी ओवर में करेंगे। बल्कि यार ये वाली बात से मुझे याद है, जलाल आखिरी ओवर बड़ा अच्छा कराया है वसीम ने। अगर लेट्स सपोज
हाँ
वहां पे अगर 10-15 रन और पड़ जाते, तो फिर शायद गेम ना थोड़ी सी डामाडोल हो जाती पाकिस्तान के हाथ से।
बिल्कुल,
मतलब आखिर में
आपने
रुका है स्कोर।
बहुत अच्छा याद किया, सिर्फ 3 रन उसको पड़े थे आखिरी ओवर में और बड़ा क्रूशल था, बल्कि शकीब ने भी आखिरी अपनी जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन थी उसमें ये जिक्र किया था कि आखिरी ओवर में हम लोगों ने बड़ा कम रन्स बनाए, और शायद वही डिफरेंस था। मैं तो ये बोलूंगा इवन जब पाकिस्तान ने पावर प्ले फिनिश किया है तो पावर प्ले में ही पाकिस्तान 10 रन एटलीस्ट ज़्यादा बना सकता था, इजीली 56 तक पाकिस्तान पावर प्ले में स्कोर बना सकता था। उधर रिजवान से स्ट्राइक नहीं हो रही थी और बाबर से ना बाबर की शॉटें प्लेस नहीं हो पा रही थी, तो क्या उस पर बोलोगे ज़रा, थोड़ा सा इंटेंट तो शो करना पड़ेगा पावर प्ले में भाई।
यार इंटेंट तो शो करना पड़ेगा, लेकिन यार मुझे कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है जलाल बाबर और रिजवान से। थ्रू आउट इनका जो स्ट्राइक रेट है पावर प्ले में, वो इतना ही रहता है, 50-55। उनका माइंडसेट ही मेरे ख्याल में यही होता है कि हम लोग इतना करें। फिर उसके बाद भी आपने एक और चीज नोट की होगी, जब बाबर और रिजवान खेल रहे होते हैं, शुरू में रिजवान स्ट्राइक पकड़ता है, ठीक है, और जब रिजवान सेट हो जाता है, जब हम लोग उम्मीद लगाते हैं कि ये वहां पे थोड़ा और छक्के छक्के मारेगा, तो वो फिर वहां पे स्लो डाउन आ जाता है, और बाबर आजम जो है वो वहां पे फिर थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये भी एक इनकी कोई एक अजीब सी केमिस्ट्री है,
हाँ दोनों
तो
साथ
ये एक
क्लिक नहीं कर पा रहे ना, कि दोनों साथ
क्लिक नहीं
थोड़ा
कर पा रहे।
एग्रेसिवली खेल पाए, एक एग्रेसिव खेलता है तो
हाँ
दूसरा थोड़ा बच बचा के खेल रहा होता है, पता नहीं उसकी ज़रूरत है या नहीं है। मेरा ख्याल है वो तब भी इनको करना चाहिए, अगर एक इनमें से आउट हो जाए तो फिर अगला बंदा फिर कहता है चलो मैं इनिंग्स के एंड तक चलूंगा और प्ले अराउंड कराऊंगा बाकी प्लेयरों को, लेकिन थोड़ा सा शायद इंटेंसिटी आराम से, मेरा ख्याल है 10 रन तो यार आराम से बना सकते थे। बाबर की कुछ शॉटें बिल्कुल फील्डर के आगे उसके हाथों में चली गई, वो बाबर को भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आराम से ज़्यादा रन हो सकते थे। और जो आपने उसकी बात की ना कि बॉलिंग में सर नसीम ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई है, वसीम ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई
हाँ,
है,
शुरू के
बाकी
ओवर
आपके
तबाही।
सारे बॉलर्स स्ट्रगल किए हैं, इवन तो इफ्तखार ठीक ओवर करा गया एक, तो थोड़ा सा हमें बॉलिंग में भी देखना पड़ेगा यार, कि जब अटैक होता है तो हमें समझ नहीं आती एकदम से कि फिर क्या करें।
हाँ बॉलिंग में, लेकिन यार ये वाले मैच में एक अच्छा किया इसने बाबर आजम ने, कि जब शादाब को भी पड़ गई पहले ओवर में, नवाज को भी पड़ गई, फिर
हाँ
आगे ये इफ्तिखार को ले आया था ना। ये
हाँ
वाली चीजें हम पहले थोड़ी कम एक्सपेक्ट करते थे बाबर आजम से, तो ये एक चलो पॉजिटिव है। बाकी एक और चीज जलाल एड ऑन करूंगा बाबर और रिजवान पे, कि इनकी जो रनिंग बिटवीन द विकेट है ना, वो वाली बहुत आउटस्टैंडिंग है।
जबरदस्त है,
मतलब
बिल्कुल
कि ना
जबरदस्त
वो
है।
वाला एक पॉइंट है जो कहते हो यार, इस टाइम जो टॉप ऑर्डर्स हैं वहां पे ये चीज नजर नहीं आती
हाँ
है ना,
ये बात तो
तो
मानने
ये एक
वाली
बड़ा
है,
पॉजिटिव है।
बिल्कुल मानने वाली बात है। अच्छा इसमें अब बांग्लादेश पे थोड़ी सी आए, लितिन दास और शकीब पे तो हमने बात कर ली। शकीब तो मेरे मेरी तो बुक के अंदर दुनिया के जो टॉप फाइव
हाँ
ऑलराउंडर्स हैं
ऑलराउंडर बिल्कुल।
उनमें तो वो आता है
हाँ
T20Is की खास तौर के ऊपर। और मैंने तो शायद ऑल, हमने एक वीडियो बनाई थी
आप
उसका हम लिंक
बिल्कुल,
भी दे
हाँ
देंगे, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन में
बिल्कुल
लिंक भी डाल देंगे
उसमें
कि टॉप फाइव एवर ऑलराउंडर्स। तो उसकी लिस्ट में जो हमने पांच मैंने जो बनाए थे उसमें शकीब भी आता है।
पांचवें नंबर पे था, बिल्कुल पांचवें था,
हाँ
चौथे पे था,
आई थिंक पांचवे पे था।
पांचवें।
तो अच्छा इनकी अब ओपनिंग स्ट्रगल कर रही है, जब से तमीम इकबाल गए हैं और वो रेगुलरली T20 क्रिकेट तो खेल ही नहीं रहे, वो वनडे में अभी उनकी वापसी हुई थी वो भी उस तरीके से नहीं खेल सके, लेकिन तमीम के बाद इनका टॉप ऑर्डर सेट ही नहीं हो रहा। पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि इन्होंने डिफरेंट कॉम्बिनेशन स्टार्ट किए हैं, शंटू शंटू भी आ गए लेकिन शंटी हुई है सबकी, कोई उस तरीके से कोई चल नहीं पा रहा।
सही। हाँ उस तरह कांस्टेंट जो आप कह सकते हैं कि एक आपका कि आपको फेसर मिल गया, उस तरह कोई हिसाब नजर नहीं आ रहा। बल्कि मैं तो बोलूंगा शंटू का डिसीजन काफी खराब है इनका ऊपर लाना, क्योंकि शंटू की आप स्ट्राइक रेट भी देखें 100 तक है, और उसके अलावा अगर आप उसके रिसेंट मैचेस वगैरह भी देखें तो उस पर कोई उसने खास कोई स्ट्राइक रेट से नहीं खेला, तो ये एक इशू है। इसको रिजोल्व करना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी इनके पास इतना टाइम है कि वर्ल्ड कप के लिए कोई और ये कोई सेटअप किए अपना, कुछ
यार
कोई और
देखो
चीज ट्राई करें।
शांटू और जो सौम्य सरकार है ना, उन दोनों की कुछ शॉटें तो बड़ी क्लासिकल होती हैं, देखने में लगता है बैट्समैन दोनों बड़े टैलेंटेड हैं लेकिन दोनों उस तरीके से अभी तक अपना वो टैलेंट को परफॉर्म नहीं कर सके वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। इवन जो सबीर अहमद है इनके, वो देखने में तो बड़े कॉम्पैक्ट और बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी लगते हैं। आई थिंक कि इनका जो वो माइंड का कोई थोड़ा सा मसला है, मेंटल मसला ज़्यादा है। देखो इन्होंने साबिर और मैदी को भी ट्राई किए ओपनिंग पे, वो भी उन्होंने फिर चेंज कर दिया, अब दोबारा ये पुराने सरकार और शंटू पे चले गए। मैं तो बोलूँगा जैसा बाबर और रिजवान ऊपर आ रहे हैं ना, शायद इनको जो है ना लिटन दास ही ओपनिंग करानी चाहिए और साथ कोई और आ जाए।
यार लेकिन लितिन दास अगर ऊपर आता है तो फिर तो मिडल ऑर्डर इनका फुल फुल खत्म हो जाएगा। आफीफ है और शाकिब है खाली, और मेरे ख्याल उसके अलावा तो आपका मिडल ऑर्डर सारा कोलैप्स कर
यार
जाएगा,
नहीं,
क्या
यासिर
कहते
यासिर अली इनका बड़ा अच्छा है बैट्समैन है, उसको मौके ही नहीं मिलते। जिस तरह शदाब खान और नवाज को हम रोना रोते हैं
हैं।
ना, बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस अक्सर मेरी उनसे बात होती है तो वो यही कह रहे होते हैं कि यासिर को मौका ही नहीं मिलता तो वो बड़ा लेट आता है, हालांकि उसकी बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है डोमेस्टिक में अगर आप देखो ना। तो मेरा ख्याल है लितन ओपनिंग पहले भी करते थे, जैसे समीर खान कह रहे हैं कि तमीम इकबाल को मौका देना चाहिए 2020 में। यार आई थिंक कि तमीम इकबाल का अपना डिसीजन है 2020 ना खेलने का, अगर कोई बांग्लादेशी फैन राबी साहब वगैरह अगर हैं तो वो हमें कंफर्म करें। लास्ट
यार
वर्ल्ड
वैसे
कप
इनका तो होना चाहिए, ये तो अच्छे प्लेयर हैं यार, मतलब ये तो स्ट्राइक वगैरह भी काफी मारते रहे हैं,
यार आई थिंक
आईपीएल
लास्ट
वगैरह में
वर्ल्ड कप
भी
तो ये
खेले।
अपनी मर्जी से नहीं खेले थे क्योंकि ये इंजरी के वजह से काफ़ी अरसे से बाहर थे, तो इन्होंने बोला था कि ज्यादती हो जाएगी अगर मैं किसी यंगस्टर की जगह पे आ जाऊं क्योंकि पूरे साल ये खेले नहीं थे। और इस दफ़ा आई डोंट नो कि क्या मसला है कि ये भी स्क्वाड में नहीं है। देखो महमूदुल्लाह को भी इन्होंने नहीं खिलाया, वो जो इनके प्लेयर थे मिडिल ऑर्डर में, मुशफीक शायद रिटायर हो गए हैं वो भी चले गए हैं, तो मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा गैप तो आया है इनका, ये बात तो है।
चलो यार कोई तो है हमारे जैसा जिसका मिडिल ऑर्डर में थोड़े से गैप्स है।
लेकिन सर शकीब अकेला ही बहुत है यार, वो शकीब जैसा
हाँ यार
प्लेयर।
शकीब, शकीब ये भी अच्छा है जला कि शकीब उल हसन मतलब अभी वो सेकंड डाउन आ रहा है, ऊपर आ रहा है ना,
हाँ
क्योंकि पहले हम इसको देखते थे कि नीचे आता था। खैर उस टाइम जगह भी नहीं बनती होती, अशरफुल था उस टाइम, काफी और बंदे थे जो मतलब कि जो इनिंग को लेके चल सकते थे।
बिल्कुल। अच्छा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड पे आते हैं थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले एक शोएब मलिक साहब ने इंटरव्यू दिया है, शॉर्ट एंड
बड़ा अच्छा
स्वीट किस्म का ना
इंटरव्यू दिया
वो उनने दिया है, तो
बिल्कुल।
उस पर आपकी क्या राय है? काफी उनसे सवाल पूछा कि जी शोएब मलिक की दोस्तियां चलती हैं, वो जो उन्होंने ट्वीट किया था उस पे जो रिस्पांस दिया, आप उससे क्या है, उस रिस्पांस के बारे में कहते हो?
यार शोएब मलिक ने बड़ा एक डिप्लोमेटिक आंसर्स दिए, सही है हर चीज के, इवन आखिर में कुछ सवाल पूछ रहे थे जो जो वहां पे जर्नलिस्ट थे कि वहां पे फंसा दे इनको, लेकिन शोएब मलिक ने बड़े अच्छे एक डिप्लोमेटिक वे में आंसर्स किए। बस एक दो जगह वो फंस रहे थे जो उन्होंने इतना क्लियर नहीं किया, जैसे ट्वीट वाली बात थी, ट्वीट वाली बात पे उस तरह क्लियर आंसर नहीं कर सके वो। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा मिडल ऑर्डर पे बात की कि मिडल ऑर्डर जो है वो आपका उस तरह मतलब नहीं है, आपको सीखना चाहिए अपने नेबरिंग कंट्री से सीख लें, वो नेबरिंग का वर्ड तो नहीं, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेटर्स जो है उनसे सीख लें आप। फिर उसके बाद इसी बस उनकी ऐसी बातें थी, आप बताएं क्या
उन्होंने,
आप।
हाँ उन्होंने ये भी कहा था ट्वीट वाले मामले पे कि भाई जिसको मैसेज पहुंचना था वो मैसेज पहुंच गया है, और उन्होंने ये नहीं बताया कि मैसेज किसको पहुंचाना चाह रहे थे। ये उन्होंने ज़रूर क्लैरिफाई किया कि मेरा मकसद पॉइंट आउट करना बाबर आजम को नहीं था, जो लोगों ने अक्सर ये बोल दिया ना कि ये ट्वीट डायरेक्टेड थी बाबर आजम अपने दोस्त यारों को खिला रहा है, तो उस पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन ज़रूर दी कि मैंने बाबर आजम को ये नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि मेरी बाबर आजम से रेगुलरली बातचीत भी होती रहती है, और जब से वो कप्तान बना है तो उन्होंने कहा कि मैं उसको इतना कोई ज़्यादा तंग नहीं करता, उसको स्पेस देना चाहता हूँ ताकि वो अपने डिसीजंस खुद करे, और कोई उसको मैं मेरी वजह से वो कोई इन्फ्लुएंस ना हो तो अपने डिसीजंस ले। और उन्होंने फिर तारीफ भी की जो अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि यार देखो आप जो मर्जी क्रिटिसाइज करो, जो अच्छी चीज़ है वो बाबर आजम अपने इन प्लेयर्स को बैक कर रहा है, चाहे वो खुश दिल हो चाहे वो इफ्तिखार हो, क्योंकि पूरी दुनिया कह रही है कि ये शायद ना हो, नहीं होने चाहिए और इनकी जगह फलाने को ले आओ फलाने को ले आओ, लेकिन वो कह रहे हैं कि टीमें बनती इसी इसी तरह या प्लेयर्स इसी तरह बनते हैं कि आप उनको फुल बैकिंग दो, तो वो एक अच्छी चीज मुझे
बिल्कुल।
उनके इंटरव्यू में लगी
हाँ हाँ
कहने की
बिल्कुल,
जो उन्होंने की है।
बाकी उसके अलावा, हाँ बिल्कुल, और बाकी उसके अलावा उन्होंने पीजीएल की बात की, उसको बोला कि बड़ा अच्छा स्टेप है कि दुनिया में कहीं नहीं हो रहा तो पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया है, उसको उन्होंने काफी ज्यादा ऑनर किया। और उसके अलावा उन्होंने उस पर बात की कि मतलब कि अपनी फिटनेस पे बात की कि मैं अभी क्रिकेट अभी और भी खेलना चाहता हूँ, जहां जहां चांस मिलेगा मैं वहां वहां खेलूंगा, तो ओवरऑल सही था, ठीक था।
हाँ उन्होंने कहा मैं अभी रिटायरमेंट का मेरा कोई इरादा नहीं है,
कोई इरादा,
और वो पाकिस्तान
कोई
खेलना
इरादा
चाहते
नहीं।
हैं बेसिकली, ये भी एक अच्छी बात लगी कि वो अभी भी पाकिस्तान खेलने के लिए पुरउम्मीद है।
हाँ बिल्कुल। और एक और बात उन्होंने की ना, कि जब उन्होंने उनसे पूछा गया कि टीम में चेंजेस वगैरह की बात की मिडल, और कहते हैं यार सही है बैक करे बाबर, लेकिन ये सब जो चेंजेस होती है ये होती है आपके इवेंट के बाद, जैसा वर्ल्ड कप हो जाएगा उसके बाद फिर ये और चेंजेस को अडॉप्ट करे एनालाइज करके सारी चीजें, तो ये अच्छी थी बात। हाँ एक और बात की जलाल उन्होंने, कि उन्होंने स्ट्राइक रोटेशन पे बड़ा एम्फेसाइज किया कि यार स्ट्राइक रोटेशन होनी चाहिए काफी, तो वो उनका पॉइंट मुझे बड़ा वैलिड लगा कि जिस तरह हम भी अभी बात करें कि बाबर और रिजवान में ये चीज काफी हमें नजर आती है, स्ट्राइक रोटेशन होती रहती है, लेकिन मिडल ऑर्डर पे ये चीज काफी ज्यादा लैक कर रही है पाकिस्तान के।
हाँ मिडिल ऑर्डर में सिर्फ मुझे लगता है शादाब ही है जो रनिंग बिटवीन द विकेट सही करता है और वो रन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अलावा इवन नवाज की, नवाज ने इस मैच में तो रनिंग अच्छी की लेकिन पीछे हमने देखा है बड़ी कैजुअल रनिंग भी किया नवाज ने, और कभी वो डबल भी इफ्तिखार वगैरह की तो रनिंग का सबको पता ही है, तो वो तो बात उनकी बड़ी वैलिड थी। अच्छा अब अगेन कमिंग बैक टू द ट्राई सीरीज, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का फाइनल होना है, और फाइनल में अब आप क्या देख रहे हो मेरी जान के कितना स्कोप है, अब तो थोड़ी डरा रही है न्यूजीलैंड की टीम।
यार न्यूजीलैंड की टीम बिल्कुल डरा रही है, लेकिन मेरे ख्याल में 50-50 बोलूंगा मैं, मतलब पाकिस्तान की भी 50% प्रोबेबिलिटी है और न्यूजीलैंड की भी 50% है।
इसमें
और
से
अगर मैं प्लेइंग
पेट्रियोटिज्म
इलेवन,
के कितने परसेंटेज हैं जो आपने डाले 50% में?
अच्छा यार अभी मैंने पेट्रियोटिज्म तो डाले ही नहीं, पेट्रियोटिज्म डालूंगा तो पाकिस्तान, अगर पेट्रियोटिज्म डालेंगे तो फिर 60% हो जाएगा पाकिस्तान।
अच्छा
तो 60, हाँ मतलब कि 60-40, 50-50 कर ले विदाउट पेट्रियोटिज्म, क्योंकि यार मेरे ख्याल में, क्योंकि पाकिस्तान देखे, पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन यही होगी मेरे ख्याल में, कोई इस पे चेंजेस उस तरह नहीं कर सकते ये, क्या कहते हैं?
नहीं 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 प्लेइंग इलेवन में चेंज होंगे ना, प्लेइंग इलेवन में आपका हारिस रऊफ वापस आएंगे, और वो आप किसकी जगह आएंगे ये देखने वाली बात है, मे बी हसनैन की जगह वापस आएंगे, और
ठीक है
हारिस नसीम और मोहम्मद वसीम शायद खेलेंगे। इवन तो हम ये मल्टीपल टाइम बात कर चुके हैं कि मोहम्मद वसीम का एज अ फोर्थ सीमर खेलना चाहिए, हमें चार सीमर खिलाने चाहिए, अब वो चौथा सीमर किसकी जगह खेलेगा वो हमेशा हर किसी की अपनी राय है,
कंफ्यूजन
हैदर अली की जगह भी आ सकता है, आसिफ इफ्तिखार या शान में से इन चार बंदों में से किसी की जगह पे आप फोर्थ सीमर डालना पड़ेगा आपको, मुझे लगता है वर्ल्ड कप में यही बेस्ट राउट है, क्योंकि इस मैच में भी कमेंटेटर्स भी बात कर रहे थे कि जब पाकिस्तानी किसी पेसर को मार पड़ती है तो फॉल बैक पे आपके पास एक और पेसर नहीं है, जो हम जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम में आप देखते हो कि मिशेल मार्श भी अवेलेबल है, मार्कस स्टोइनिस भी अवेलेबल होता है, हार्दिक पांड्या इंडिया की टीम में, न्यूजीलैंड के पास जिमी नीशम वगैरह है, तो हमारे पास वो फॉल बैक पेसर नहीं है अनफॉर्चुनेटली, जो हमेशा हिस्टोरिकली हमारे पास रजाक वगैरह की फॉर्म में या अजहर महमूद की फॉर्म में होते थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक तो वो चेंज अगर कर दें तो बहुत अच्छी बात है, बाकी बैटिंग लाइनअप तो आई थिंक सेम रहेगी।
लेकिन मेरा सवाल है आपसे कि अगर फोर्थ सीमर लेके आते हैं तो वो आएगा किसकी जगह,
यार
मतलब
वही मैं कह रहा हूँ
कि
ट्रिकी।
हैदर अली को बिठाएंगे या उसको बिठाएंगे, आसिफ को बिठाएंगे, शान को बिठाएंगे, किसको बिठाएंगे?
यार
ऐसी
ट्रिकी
रैंडम
है,
गैस,
ट्रिकी
ट्रिकी है।
हैदर हैदर और शान में से आई थिंक बनता है कोई।
चले यहां पे फिर ये वाली सीरीज से ये चीज तो कंफर्म हो रही है कि खुशदिल पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ रहा मैनेजमेंट का, है ना? बल्कि हैदर
इस
अली को
पे
ज्यादा
आपको
दिल
खुशी
चाहिए।
हो रही है या आपको दुख हो रहा है ये भी
मुझे तो
क्लैरिफाई
खुशी हो
कर
रही है
दें
नहीं
है
नहीं खुशी हो रही है, मुझे खुशी हो रही है, और जाहिर सी बात है खुशी की बात
अल्लाह माफ करे यार किसी की
है।
नाकामी में खुश नहीं हुआ करते मेरे दोस्त नहीं अल्लाह करे यार वो खुशदिल जाए
देखिए
पीएसएल में
इस
दोबारा
बात,
परफॉर्म करे, डोमेस्टिक
ये
में
वाली
परफॉर्म
बात
करे।
में, ये वाली बात में मैं वही बोलूंगा जैसा मोहम्मद रिजवान, जो मोहम्मद रिजवान आजकल जवाब देता है ना कि जो मैं सोच रहा हूँ, मैं भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोच रहा हूँ, अल्लाह उसको भी कामयाब करे, अल्लाह मुझे भी कामयाब
अच्छा
करे।
कल वैसे
तो बाकी
कुदरत का
जो ना,
निजाम रिजवान के साथ बड़ा चल रहा था, पहले बाबर बचाता रहे रिजवान को, फिर बीच में कैच ड्रॉप हुआ है रिजवान का, फिर नवाज आया तो नवाज ने भी रिजवान की इनिंग्स को बचाया है, तो एंड में रिजवान इज्जत से वो अपने निकल गए, मैच भी थोड़ा सा फंसा गए और एंड में मैन ऑफ द मैच भी मिल गया। तो कुदरत का निजाम तो कल बहुत काम कर रहा था है?
कुदरत का निजाम, सही बात है, कुदरत का निजाम काफी काम कर रहा है। बाकी यार जो लोग हमें अभी देख रहे हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जरूर, और जो बेल आइकन है उसको लाजमी दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए जब भी हम कोई नई वीडियो लगाएं, और सोशल मीडिया पे भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक,
हाँ
और
इस
कुछ
टाइम के
है तो नहीं
ऊपर
है बोलो?
हम एज यूजुअल लास्ट कुछ स्ट्रीम्स की तरह मल्टी स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तो इस टाइम पे होपफुली उमेर साहब डबल चेक वैसे कर लीजिएगा, हम यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विच के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर। तो जहाँ जहाँ आप हैं वहाँ वहाँ आप देख सकते हैं उसको, और वहाँ से भी आप कॉमेंट वगैरह कर सकते हैं, कोशिश करेंगे जिस प्लेटफॉर्म पर भी हैं वहाँ से हम आपके आपको शामिल कर सकें अपनी इस गुफ्तगू के अंदर। अच्छा SS98 साहब, अगर आप अभी भी देख रहे हैं, क्योंकि कल आपने हमें बड़ी अच्छी समरी दी थी, कल के परसों जब इंडिया का वार्म अप मैच था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया जीत गया था, और आपने बड़ी प्यारी हमें समरी दी थी एक ही कमेंट के अंदर। तो अब कल भी एक वार्म अप मैच हुआ है उमैर साहब, और इंडिया हार गया यार, वार्म अप मैच हार गया बस वेस्टर्न
यार
ऑस्ट्रेलिया से,
वो पार
प्रैक्टिस मैच,
गया
वार्म अप तो नहीं
बड़ा,
कहना चाहिए उस तरीके से।
और मतलब स्कोर भी नहीं मारा ना कोई, उस तरह गेम भी नहीं खेली इंडिया ने। लेकिन आई थिंक इसमें कोहली नहीं है ना, कोहली भी नहीं है,
कोहली और
स्ट्राइक
आई
भी नहीं
थिंक
है उसमें।
सूर्या कुमार नहीं थे,
लेकिन
लेकिन
फिर भी यार, फिर भी देखें, फिर भी मेरे ख्याल में इंडिया जैसी टीम इस तरह खेले तो थोड़ा सा हो तो एक शॉकिंग है, वर्ल्ड कप से पहले उनके लिए भी सेटबैक है थोड़ा। तो
यार इसकी वजह
आप
लाइव
बताएं क्या
स्ट्रीमिंग होनी
तासर
चाहिए थी
आता है?
ताकि हमें क्लैरिटी मिलती कि भाई क्या कैसी पिच है, क्या सीन है, क्या नहीं है। तो उस तरीके से स्कोर कार्ड देख के आपको क्लियर आइडिया नहीं होता, लेकिन ये बात जरूर है कि 169 आई थिंक वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने बनाया था, उसमें डार्सी शॉर्ट ने शायद अच्छा खेला था, और उसके अलावा आपके
हॉबसन ने,
जो एश्विन ने अच्छी बॉलिंग कराई
हॉबसन
थी, एश्विन ने आई थिंक आखिरी ओवर भी अच्छा करवाया था, 3-1 विकेटें वो शायद लेके गए। और बैटिंग में सिर्फ आई थिंक केएल राहुल ने के 138 रन शायद इंडिया ने बनाए, कितने बनाए, और 74 रन उसमें से केएल राहुल के हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया
बिल्कुल।
बड़ा स्ट्रगल करता रहा, विकटें उनकी गिरती रही हैं और परफॉर्मेंस खतरनाक हुई है थोड़ी।
अच्छा हाँ बिल्कुल। अच्छा इसमें मैं देख रहा हूँ जलाल, राहुल ने अपनी स्ट्राइक रेट भी इम्प्रूव की है, 74 और 55 बॉल्स पे। ऑल्दो आपका कोई भी साथ नहीं चल सका इनके ना, राहुल के साथ कोई भी नहीं, कोई 10 मारा है, कोई 15, हार्दिक पांड्या ने 17 मारा है 9 बॉलों पे, और दिनेश कार्तिक ने 10 मारा है 14 बॉलों पे। हालांकि दिनेश कार्तिक तो यार उससे तो इम्पैक्ट, इस तरह की इनिंग नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। एक और चीज जो मैं देख रहा हूँ इनकी जो बॉलिंग लाइनअप पे इंडिया की जलाल, उस पर ये के 7 बॉलर्स इन्होंने यूटिलाइज किए हैं,
सबको
तो ये
चांस
भी
दिया
एक
है
चले
कल।
पॉजिटिव है, सबको चांस दिया है। और इसमें पांडे एक्सपेंसिव रहे हैं, 2 ओवरों में 17 खाया है। उसके अलावा वही जो आप अश्विन की बात कर रहे थे, 3 विकेट लिए उन्होंने। अश्विन नहीं है ना वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, या
है वर्ल्ड कप स्क्वाड में
है तो मतलब इनके चांसेस ब्राइट हो गए थोड़े। और हर्षल पटेल एज यूजुअल 4 ओवर में 27 और 2 विकेट लिए हैं, तो लेकिन सेटबैक है वर्ल्ड कप से पहले इस तरह का होना।
अच्छा। अब इसमें ये भी देखने वाली बात है, आई थिंक केएल राहुल ने जो पेसअप की इनिंग्स वो बाद में ही की है, यही क्रिटिसिज्म केएल राहुल बाबर आजम, रिजवान, ये तीनों पे ना यही क्रिटिसिज्म होता है कि ये शुरू में थोड़ा स्लो खेलते हैं और अगर एंड तक ये खड़े रहें तो फिर ये अपनी इनिंग्स को पेस अप कर लेते हैं, स्ट्राइक रेट इनका बेहतर हो जाता है। ऑन द अदर एंड, आज रोहित शर्मा ने जो रिसेंटली शुरू किया है वो ये किया है कि वो शुरू से ही तेज खेलने की कोशिश करते हैं और उसमें वो जल्दी अक्सर आउट भी हो जाते हैं, जिसमें लोग कहते हैं कि जी रोहित शर्मा क्यों अब आउट होना शुरू हो गए, लेकिन ऑब्वियसली वो अपने मुंह से कहते हैं कि अब जी हमें अपनी एग्रेसिव गेम करनी पड़ेगी।
अडॉप्ट करना
तो ये
पड़ेगा,
केएल राहुल पे
लेकिन
थोड़ा
यार
सा
बड़ा
क्वेश्चन मार्क
मुश्किल है।
है।
हाँ नहीं बिल्कुल, लेकिन मेरे ख्याल में जलाल थोड़ा मुश्किल है यार। आप एक अरसे से एक इनिंग खेलते आए हो, एक अपना आपने एक वो स्टाइल बनाया हुआ है, उस स्टाइल को अडॉप्ट, फिर एक नए स्टाइल को अडॉप्ट करना काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट है,
नहीं
क्या
नहीं
ये?
मुश्किल तो है, लेकिन रोहित शर्मा भी यार शुरू में टाइम लेते थे। अगर आप देखो तो इवन शेखर धवन और रोहित शर्मा जब ओडियाईज में भी या पहले अगर T20s में भी ओपनिंग करते थे तो ये पहले 6 ओवरों में या पहले 10 ओवरों में बहुत ज़्यादा स्कोर तो नहीं होता था इनका, थोड़ा टाइम लेते थे। लेकिन अब रोहित शर्मा को देखो, वो बॉल वन से मारने की कोशिश करते हैं, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं अगर इस उम्र में आके, तो केएल राहुल को तो करनी चाहिए यार, फ्यूचर कैप्टन भी हो सकता है, क्या कह सकते हैं। आईपीएल में भी उनके ऊपर यही क्रिटिसिज्म होता है यार कि स्लो खेलते हैं स्लो खेलते हैं। हालांकि आईपीएल में ऑरेंज कैप हमेशा इनको मिल रही होती है, जो हाईएस्ट रन गेटर्स होते हैं आईपीएल में उसके आसपास हमेशा ही होते हैं, लेकिन इनकी टीम नहीं आगे
हाँ
जाती ये मसला है ना इनका।
वही है बिल्कुल। देख खैर वो ऋषभ पंत ने फेस किया है, फेस करके 9 रन मारे 11 बॉलों पे, तो लेकिन यार शॉकिंग है इंडिया की इस तरह की इनिंग बैटिंग खास तौर पे।
देखो एक हमारी लड़कियां शॉकिंग हार गई 1 रन से यार, वैसे उसका दुख वैसे बड़ा चढ़ा है मुझे। और दूसरा जो है आपका इंडिया जो है हार गया, वो भी अनएक्सपेक्टेड था, दोनों अनएक्सपेक्टेड लॉस थे यार जो हुए, मतलब दोनों की उम्मीद नहीं थी उस तरीके से।
जलाल मैं तो सोच रहा था पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होगा, कल आपको याद होगा हम बात कर रहे थे स्ट्रीम में, शायद
हाँ
बात कर रहे थे कि यार पाकिस्तान यहाँ से श्रीलंका को हरा देगी, उधर से थाईलैंड आ जाएगी इंडिया से, तो फिर हम लाइव स्ट्रीम करेंगे,
मैं
लेकिन वो
आपको कह
होते ही
रहा था कल, मैंने क्या कहा था कि पता
नहीं
कोई नहीं हमारी टीम का सर अनप्रेडिक्टेबल
होगा।
टीम है, एक दिन थाईलैंड से हार गई, अगले दिन इंडिया को हरा दिया और अब श्रीलंका से हार गई, तो देख लो यार वो पाकिस्तान की
यार
ब्रिलियंस
वाकई
यही है भाई, वरना पाकिस्तान का मजा
बिल्कुल
क्या है मैच देखने का है।
सही बात है। बाकी मुझे ये बताएं कि शाहीन शाफीदी की क्या अपडेट है, आपको लगता है कि पहला मैच खेलेंगे वर्ल्ड कप का?
यार अब तो आपके रमीज राजा साहब ने बोल दिए, हमने इसके ऊपर वीडियो भी शॉर्ट बनाई हुई है कि रमीज राजा ने ही बोला था कि 90% फिट हो चुके हैं, डॉक्टर्स ने जो रमीज राजा को बताया था। रमीज राजा ने जब शाहीन अफरीदी से खुद बात की तो उन्होंने कहा यार 110% मैं फिट हूँ, प्रैक्टिस मैच खेलूंगा और इंडिया के खिलाफ भी
अच्छा
खेलूंगा। लेकिन उसके बाद एक और इंटरव्यू हुआ रमीज राजा का, उसमें उन्होंने कहा कि यार देखो नी की इंजरी बड़ी ट्रिकी होती है और हम नहीं चाहते कि हम शाहीन अफरीदी का कैरियर जो है ना वो ज़ाया कर दें इस एक मैच के चक्करों में, तो अभी 100% श्योरिटी नहीं है। उन्होंने ये कहा कि ये यंग लड़का है, इसमें बहुत ज़्यादा जज्बा है और ये कोई मैच मिस नहीं करना चाहता, लेकिन ऑब्वियसली वो कहते हैं क्रिकेट बोर्ड ये ज़रूर वेन करेगा कि यार ये कोई इसके कैरियर प्रोलॉन्ग कैरियर को हर्ट करने वाली ना हो जाए। बिल्कुल जी, ये देखो क्रिकेट फीवर भाई कैसे हमें अपडेट
बिल्कुल, ये
देते हैं
फिर वही
धड़ाधड़।
से क्या कह रहे हैं, क्रिकेट फीवर, शाहीन विल ज्वाइन द स्क्वाड ऑन 15 अक्टूबर इन ब्रिस्बेन, क्या बात है यार। वैसे शाहीन हो, अच्छा आपकी इस बात से जलाल मुझे याद आया, जो भी यही इशू बुमराह के साथ भी हुआ है ना, बुमराह भी आ गए, अब देखें अब वो लॉन्ग टर्म चले गए अपनी जो इंजरी की वजह से,
यार
ये
और
बड़ा
वही
एक
बात है ना कि
देखते हुए करना
अब
पड़ेगा स्पेंड।
ट्रिकी मामला है, बुमराह का जो एक्शन सबको नजर आ रहे थे जब वो कैरियर में आए थे, सारे जो क्रिकेट के एक्सपर्ट्स भी थे, शोएब अख्तर ने भी कहा था कि बुमराह को बहुत केयरफुली यूटिलाइज करना पड़ेगा क्योंकि इनका जिस तरीके से एक्शन है इनकी कमर उड़ जाएगी। तो अब बुमराह को अक्सर लोग, अच्छा ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, अभी मेरे पास एग्जैक्ट स्टैट्स तो नहीं है नंबर ऑफ बॉल्स के, लेकिन अक्सर लोग ये बुमराह पे क्रिटिसाइज करते हैं खासतौर पे इंडिया में कि यार ये आईपीएल के लिए तो मैच फिट होते हैं, आईपीएल खेल जाते हैं, इंडिया के लिए नहीं मैच खेलते। लेकिन अगर आप ओवरऑल लास्ट जब से बुमराह ने डेब्यू किया है ना इंडिया के लिए, या लास्ट 5 साल का भी अगर रिकॉर्ड निकालो, तो सबसे ज्यादा बॉल्स इंडिया के लिए बुमराह ने ही की हैं, उसके बाद मोहम्मद शमी ने की हैं, क्योंकि ये तीनों फॉर्मेट खेलने वाले प्लेयर हैं, टेस्ट में भी इन्होंने जान मारी है, ओडीआईज में भी, T20s में भी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडिया ने ना इसको सही यूटिलाइज नहीं किया, बहुत ज़्यादा इसको जो है ना बॉलिंग करवा दी है, और फिर आईपीएल में भी ऑब्वियसली आपको जान मारनी पड़ती है अपनी फ्रेंचाइज के लिए, तो वहाँ पर तो परफॉर्मेंस बेस्ड और ज़्यादा होती है, तो वो भी आप मिस नहीं करते। तो तो थोड़ा मिस कर दिया। देखो मिचेल
वो
स्टार्क आईपीएल मिस कर
मुझे
देते
आप
हैं, बिग बैश भी वो मिस कर देते हैं कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए रेडी होना चाहता हूँ।
मुझे आपकी ये वाली बात से ना वो याद है, जब इसकी खबर आई ना बुमराह की कि ये इंजर्ड हो गए, तो वो ट्विटर पे ट्रेंडिंग हो गया था आईपीएल आईपीएल, और मीम बनना स्टार्ट हो गई थी ना बुमराह की कि आई एम
हाँ
प्रिपेयरिंग फॉर आईपीएल इस तरह करके। चलो जनाब थोड़ी ऐसी बात हो रही है तो मुझे ये तो बताएं कि आफ्ताब इकबाल ने कल ट्वीट की थी एक, और ट्वीट नहीं की थी सॉरी, उन्होंने वो एक शो में आके बात की थी, तो शो में आने के बाद फिर आज जब बाबर आजम ने आज आज जब वो बाबर आजम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आप क्या आपके बारे में जर्नलिस्ट ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो उस पर उन्होंने आगे से क्या कहा जरा बताया ना,
हाँ
डिटेल
वो कल
बताया।
नहीं आफ्ताब इकबाल ने कहा तो उन्होंने कुछ दिनों पहले ही अपने शो में इस तरह बात की थी कि जी बाबर आजम स्टार प्लेयर नहीं है क्योंकि उसकी ईगो बहुत ज़्यादा है और वो अपने मनपसंद प्लेयर खिलाता है ये वो ना। तो बाबर आजम से कल ये सवाल हुआ तो वो कहते हैं कि भाई वो कौन है, मैं तो नहीं जानता हूँ। तो मेरा ख्याल यही है ना
देखे
फिर जवाब था उनके लिए, बहुत कह के
अच्छा
सर।
जवाब था, बहुत अच्छा जवाब था।
बाबर आजम जरा लीथल मोड में नहीं आता कभी, पहले कहता है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और अब इधर कह दिया मैं तो जानता ही नहीं।
यार बाबर आजम वही बात है, पहले भी हमने बात की कि थोड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो थोड़ा और एक वो कि मतलब वो थोड़ा सा और बोले है ना एक्सप्रेसिव वो उस चीज
यार
को। हाँ
कम्युनिकेशन स्किल्स का मसला, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। हमारे पूरे जो ये कोचिंग स्टाफ है करंटली, बीट सकलैन मुश्ताक मोहम्मद यूसुफ या आपके बाबर आजम हो गए, सबका कम्युनिकेशन स्किल्स का मसला है। शान मसूद की जो होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस वो अच्छी होती है, देखने को ठीक लगती है, वो अपना मैसेज सही कन्वे कर लेते हैं। शादाब खान का भी देखने को सही लगता है आपको कि वो ओनरशिप लेता है जब भी आप देखो तो।
ये बड़ी अच्छी बात की आपने बताया, शादाब हमेशा ओनरशिप लेता है चीज की, और मतलब कि ऑन करता है कि यार मेरे से मिस्टेक हुई है, और उस वजह से मतलब कि वो आता है ऑफिशियली पब्लिकली आके बोलता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है उसकी।
हाँ
और यार
वो
शादाब से याद है उसने वहां पर रिकॉर्ड भी तोड़ दिया उमर गुल का 86 विकेट्स के साथ, तो ये भी एक अच्छी
क्या
बात है।
बात है, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हो गए हैं इसी उम्र में पाकिस्तान का, सिर्फ शायद अफरीदी रह गए हैं आगे 98 विकेट्स के साथ।
बिल्कुल
वुडुपा कहते हैं प्लेयर T20 के दोनों हैं एबी और ब्रेंडन। यार आपकी बात
यार
बिल्कुल
जेनरल
ठीक है,
है।
लेकिन इस पे एक मेरा जो है ना हमेशा से पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, आई थिंक उमैर आई डोंट नो कि उससे एग्री करेगा या नहीं करेगा क्योंकि हमारी कभी इस पे उस तरीके से गुफ्तगू नहीं हुई। ए बी का रिकॉर्ड अगर आप उठा के, नो डाउट मैं ए बी का बहुत बड़ा फैन हूँ हर क्रिकेट फैन की तरह, प्लेयर तो वो शायद टैलेंट वाइज तो वो शायद विराट कोहली वगैरह से भी ऊपर थे, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखो तो डोमेस्टिक या आईपीएल में तो उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, इंटरनेशनल T20 में शदीद किस्म का बुरा रिकॉर्ड है उनका, खास तौर पे बैट्समैन लाइक एबी डिविलियर्स। इंटरनेशनल अगर T20 का उनका रिकॉर्ड निकाल के देखो उमैर साहब, मैं बल्कि इधर से निकालता हूँ, तो बड़ा ही उनका जो है ना कोई मीडियोकर सा रिकॉर्ड है। और मुझे तो कभी कभी यकीन नहीं आता कि एबी डिविलियर्स का ऐसा कैसा रिकॉर्ड हो सकता है।
यार ये कब रिटायर हुए हैं डिविलियर, कब इन्होंने छोड़ा है T20
यार
इंटरनेशनल,
अब तो हो गए हैं मेरे
उस
ख्याल
टाइम
दो
के
दो तीन साल
हिसाब
तो
से
हो गए
अगर हम
हैं।
देखें 3 साल हो गए हैं ना, उस हिसाब से शायद ये भी वजह हो सकती है, उस टाइम T20 इतनी इतनी ज्यादा ग्रो नहीं करी थी,
नहीं
इतनी
यार
चीजें नहीं थी।
ग्रो कर रही थी ये, बस
देखिए अब क्लास तो है, क्लास तो है यार इस
उसमें
बंदे
तो
की,
नो
मतलब
डाउट यार।
इसकी क्लास का तो मतलब यॉर्कर पे जो छक्के मार सकता है यार वो क्या कर सकता होगा
अच्छा टी
सोचे।
ट्वेंटी आईज में आप देखो ना इन्होंने थोड़े मैच नहीं खेले, इन्होंने उमैर 78 मैचेस खेले हैं, मतलब 75 इनिंग्स कर लो, मैचेस तो
अच्छा
चलो 75 इनिंग्स हैं इनकी, और 26 का 26 की इनकी एवरेज है और 135 का इनका स्ट्राइक रेट है और 1672 रन है। तो ये आप एबी डिविलियर्स से, ये तो मोहम्मद रिजवान वाला रिकॉर्ड, एवरेज स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट मोहम्मद रिजवान वाली और एवरेज उनसे आधी, तो ये तो आप वो नहीं कर सकते ना उनसे, बड़ा
बाकी
अंडर अचीव किया।
इनका बाकी जो T20 का है उस पे 150 की स्ट्राइक रेट
हाँ
है,
ये बात है ना
उस पे इन्होंने 9,000 रन मारे, 340 मैचेस खेले, थर्टी
टी
सेवन की एवरेज है, तो
ओवरऑल T20 में जिसमें डोमेस्टिक या आईपीएल आप मिलाते हो और इंटरनेशनल भी मिलाते हो तो उसमें 150 का स्ट्राइक रेट है, 37.24 की एवरेज है।
एक्सेप्शनल है
हाँ लेकिन इंटरनेशनल पे
वो
वो
थ्री
उस तरह
फोर्टी
नहीं कर
मैचेस
सकते।
खेलने के बाद। यार मुझे तो जनाब साउथ अफ्रीका का हर्षल गिब्स भी बड़ा याद आता है यार, बड़ा एक लेवल का बंदा था वो, अगर आजकल के दौर में होता ना
सही बात है।
तो।
हजीक कुरैशी साहब कहते हैं कि आप बता सकते हैं मैन ऑफ द मैच किस क्राइटेरिया से मिलता है? मेरा ख्याल है कमेंटेटर की जुडिशरी डिसाइड करती है, लेकिन आज नवाज को मैन ऑफ द मैच क्यों नहीं मिला? बिल्कुल सर हजीक, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, हमने इसको शुरू में ही जिक्र किया कि ऑब्वियसली ये जो कमेंट्री पैनल होता है वो वोट करता है, जो भी उनका ज़्यादा जिसकी तरफ जाता है उसको मिलता है मैन ऑफ द मैच, लेकिन बिल्कुल नहीं बनता था सर, मोहम्मद नवाज का ही बनता था, रिजवान का बिल्कुल नहीं बनता था। आई डोंट नो कि किस तरीके से उन्होंने ये सोचा, हालांकि रिजवान तो पूरे मैच में बचते ही रहे हैं, इवन एंड में मैच फंसा भी गए थे, तो अगर बाबर को भी दे देते तो हजम हो जाता, लेकिन रिजवान की तो बिल्कुल ही समझ नहीं आई कि किस तरीके से उन्होंने जज किया उसको। क्रिकेट
हाँ यार
फीवर भाई
रिजवान
कहते हैं।
भी वो जो मोहम्मद नवाज ही डिजर्विंग था मैन ऑफ द मैच का।
बिल्कुल
अच्छा क्या कह रहे हैं क्रिकेट फीवर,
कहते हैं कि जी ए बी
एबी
डिविलियर्स
डिविलियर्स
हैड
हैड क्लास बट
क्लास।
परफॉर्मेंस वाज बैड, सेम इज द केस ऑफ खुशदिल शाह। यार वो
नहीं
खुशदिल शाह को तो ना मिलाए यार क्रिकेट फीवर डिविलियर के साथ, थोड़ा ख्याल करें। माना हम भी वो पाकिस्तान से बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन क्लास है डिविलियर की यार, उस क्लास को तो नहीं पहुंच सकते। ये मेरे ख्याल में इन्होंने थोड़ा सरकास्टिकली बोला
हाँ सार्केस्टिक ही बोला है इन्होंने, लेकिन
तो
देखो डोमेस्टिक में तो बात तो एक तरीके से ठीक है, डोमेस्टिक में तो खुशदिल ने भी बड़ा पेला है 35 गेंदों पे 100 भी मारी हुई है खुशदिल ने भाई, ऐसी बात नहीं है, वही 35 गेंदों की 100 ही भारी पड़ी हुई अभी तक
वही याद करा देते हैं इनको। सही बात। तो और क्या खबर है हमारे पास आज की?
बस यही है सर, आप अपना फाइनल वर्डिक्ट दे दे दें, फिर हम इजाजत लेते हैं। कल
हाँ
मैच कौन जीत रहा है भाई?
यार उस पे फाइनल वर्डिक्ट मेरी ये है कि 50-50 है,
50-50
50-50
नहीं
तो नहीं है
चलेगा,
मेरी,
50-50
50-50 तो
मान
नहीं है
लिया
ना,
मान लिया मान लिया, लेकिन एक आप बताओ ना कि मैच कौन जीतेगा? 50-50 तो ठीक है, मान लिया, मैच कौन जीतेगा?
यार पाकिस्तान।
पेट्रियोटिज्म, यहां पे पेट्रियोटिज्म आई है, मैं
नहीं
बता रहा हूं आपको।
पेट्रियोटिज्म भी है, पेट्रियोटिज्म भी है, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे एक वाइब आ रही है कि यार पाकिस्तान अच्छा खेल जाएगा, मतलब के अच्छा खेलेगा पाकिस्तान। मतलब उनके देखे ना लास्ट मैच पे स्पिनर्स ने डोमिनेट किया था, ब्रेसवेल ने किया था, सेंटनर ने किया था, तो अगर पिच जिस तरह अगर अगर जो पिच आज वाली होती है तो फिर तो शायद शायद वो उस तरह डोमिनेट ना कर सके, तो ये
क्रिकेट
मेरा
फीवर
पॉइंट
साहब,
है।
सिर्फ एक हारिस रऊफ की इंक्लूजन ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इन प्लेस ऑफ हसनैन, बाकी तो मुझे लगता है सेम ही खिलाएंगे। अगर आप मेरे से वैसे पूछना चाहो, जैसा मैंने पहले कहा, मैं देखना चाहूँगा कि चौथा सीमर पाकिस्तान खिलाए, मोहम्मद वसीम को एज अ फोर्थ सीमर खिलाए, हसनैन को भी खिलाएं, लेकिन वही ट्रिकी बात आ जाती है कि मोहम्मद वसीम फिर किसकी जगह पे आएगा, आपको किसी बैटर को बिठाना पड़ेगा, या हैदर को या आसिफ को या शान को, अब आई डोंट नो पाकिस्तान जो पहली बैटिंग में स्ट्रगल कर रहा है वो ये वाली रिस्क लेगा या नहीं लेगा, तो यही एक ऑप्शन लग रही है मुझे लगता है उमेर साहब कि
क्या लगता है आपको जलाल साहब?
मुझे लगता है कि फीलिंग आ रही है कि न्यूजीलैंड जीत जाएगा, मुझे ऐसे लग रहा है, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ, मैं
अच्छा
चाहता ही हूँ कि पाकिस्तान जीते, क्योंकि बड़ा वो एक वर्ल्ड कप से पहले सीन बैड हो जाएगा अगर पाकिस्तान हार गया तो।
यार देखते हैं, मुझे
हारिस
लग रहा है
रऊफ, हारिस
पाकिस्तान
रऊफ के
जीत
ऊपर
जाएगा,
काफी
आपको
गेम
लग रहा है
है,
न्यूजीलैंड
हारिस
जीत
रऊफ के
जाएगा,
ऊपर बहुत ज्यादा गेम
कल
है।
तो फिर कल तो मजा आएगा फिर कल तो लाइव आने का मजा आएगा आवाज आ रही है मेरी आपको?
हाँ, नहीं मैं वुडू पार्क कह रहे हैं, आई थिंक ये कहना चाह रहे हैं न्यूजीलैंड 70%, पाकिस्तान 30%, ये इतना बड़ा गैप नहीं है, मैं भी बोलूंगा 50-50%
ठीक
है, क्योंकि उनकी टीम भी कोई बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं है। देखो फिन एलन दोनों मैचों में चले हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले मैच में, तो आपको लग रहा है कि उनकी टीम बहुत ज्यादा अच्छी है, अगर फिन एलन जल्दी आउट कर लेता है पाकिस्तान तो फिर सीन बन सकता है पाकिस्तान का। अच्छा वुडू पाक क्या कहते हैं?
98 कह रहे हैं शमी,
अच्छा
SS98 कह रहे हैं शमी शार्दुल सिराज हैज रीच्ड द ब्रिस्बेन टीम, इंडिया विल ट्रेवल टू ब्रिस्बेन टुमारो फ्रॉम पर्थ।
ठीक है जी,
अच्छा तो
बेहतरीन हो गए,
अभी कोई फाइनल हुआ इन तीनों में से? मेरे ख्याल में फाइनल नहीं हुआ ना कि कौन
फाइनल नहीं
किसको
हुआ
किस
भाई
टीम को जीतने
ये
वाला।
अभी, हाँ फाइनल पता नहीं ये कब होगा कैसे होगा। उधर सौरव गंगुली साहब बीसीसीआई से उनकी छुट्टी होने की बातें हो रही हैं भाई, वो उनके ऊपर कहानी आ गई है, तो वो डिसीजन लें अपने या ये डिसीजन लें बैठ के कहीं इधर क्या होगा, उनको अपनी कुर्सी के लाले पड़े हैं इस टाइम के ऊपर।
सही बात।
अशफाक अली साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई उमेर भाई। वालेकुम अस्सलाम। आज अगर मोहम्मद
वालेकुम
नवाज ना होता
अस्सलाम।
तो पाकिस्तान को जीत से कौन नवाजता? बस कुदरत का निजाम था सर, मोहम्मद नवाज क्या चीज है कुदरत के आगे है। लेकिन बात
यार
ठीक
वैसे ये
है
बात है, अगर मोहम्मद नवाज आउट हो जाता
तो
तो
क्या
फिर
होता
कौन से बंदे से हम उम्मीदें लगा सकते थे?
यार? वही बात है ना, रिजवान और बाबर बैटिंग तो अच्छी करते हैं लेकिन वो उस स्टेज के ऊपर मैच ले जाते हैं कि फिर मिडिल ऑर्डर से अगर परफॉर्मेंस ना हो तो फिर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो जाता है मिडिल ऑर्डर पे। उनके पास डू और डाई वाली सिचुएशन आ जाती है मिडिल ऑर्डर के ऊपर। अच्छा, बुडुबा कहते हैं न्यूजीलैंड में हाई टारगेट देने की एबिलिटी है क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर परफॉर्म करता है। बिल्कुल सर, अब देखना ये पड़ेगा कि न्यूजीलैंड कल क्या चेंजेस करता है क्योंकि एडम मिलन पहले बांग्लादेश वाले मैच में, पहले वाले मैच में तो उन्होंने 2 ओवर ही कराए थे, फिर बाद वाले मैच में अभी वो आए हैं। देखना पड़ेगा कि वो क्या चेंजेस करते हैं। ट्रेंट बोल्ट वापस आते हैं नहीं आते, केन विलियमसन वापस आते हैं नहीं आते, गपटिल का क्या करना है, उनके लिए भी कुछ कंसर्न्स हैं ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात ठीक है आपकी कि उनका जो मिडल ऑर्डर है वो उसमें पावर हिटिंग कैपेबिलिटी पाकिस्तानी मिडल ऑर्डर से
एग्रेसिव
ज्यादा है,
है। बिल्कुल
ये बात ठीक है।
उनका यार चैपमैन बड़ा फिट स्ट्राइकर है, उसकी इनिंग मैंने उस दिन हाइलाइट्स देख रहा था पुराने मैचेस की, डोमेस्टिक की,
और
बड़ी
वो
अच्छी उसकी स्ट्राइक है।
हांगकांग का प्लेयर था, हांगकांग की टीम से खेले में वो, और फिर वो न्यूजीलैंड शिफ्ट हो गए, फिर न्यूजीलैंड की टीम में आ गए। फिलिप्स अच्छे प्लेयर हैं, हिटिंग करते हैं। नीशम है, ब्रेसवेल की अभी तक बैटिंग नहीं
निशम
आई उस तरीके से, चांस नहीं मिला उनको, लेकिन वो भी हमने देखा है कि उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ एक अनरियल किस्म का, बड़े कम लोगों
अनरियल।
ने वो इनिंग्स देखी है उमेर साहब। जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं अगर उनको मौका मिले तो वो ब्रेसवेल की वो
बिल्कुल
चेज देखें जो उन्होंने आई थिंक आयरलैंड के खिलाफ किया था, आयरलैंड था नेदरलैंड था,
बिल्कुल,
इन दोनों में
आयरलैंड
से कोई टीम थी,
आयरलैंड ही होगी या नीदरलैंड होगी, देख
इन
लेते
दोनों
हैं।
में से कोई टीम थी, उनके खिलाफ बहुत ही कोई अनरियल किस्म का चेज कर दिया था इन्होंने, तो वो भी बैटिंग अच्छी कर लेते हैं।
मेरे ख्याल में आप देखें जरा आप स्टैट्स में।
अशफाक अली कहते हैं दिल धड़क रहा है क्योंकि कल जुम्मे का मुबारक दिन है, मगर जुम्मे के दिन पाकिस्तान बड़े मजे हार जाते हैं।
अरे अशफाक भाई बात सही कर रहे हैं, बस आप दुआ करें अशफाक भाई कल कुछ अच्छा हो जाए पाकिस्तान के हक में।
कुदरत का निजाम तो जुम्मे के दिन ज्यादा जोरों से चलना चाहिए, ये क्या बात हुई हैं?
यार ये फिर वही सकलैन भाई आ जाएंगे, बोलेंगे भाई जुम्मे का दिन था, मुबारक दिन था, इसमें वही हुआ जो अल्लाह ने बेहतर समझा, इस पे फिर उस तरह की बातें होंगी।
इन्होंने कहना था कि भाई जुम्मा पढ़ने को लेट हो गए थे, कोई जल्दी में आए हैं खेलने के लिए। अच्छा, इनका जो
अच्छा
है ना
जलाल,
चक्कर,
शाहनवाज धानी के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो तो काफी एक्सपेंसिव हो गए हैं अब ना, मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस उस पे इतना नहीं रहा होगा मैनेजमेंट का,
नहीं
ऐसा
है
बीच
भाई
में लग रहा था कि
कॉन्फिडेंस,
शायद उसको देगा।
बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उनकी बॉलिंग के ऊपर।
सही है।
अच्छा, एक ये मैं अभी ब्रेसवेल का निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आई थिंक इनका ना आयरलैंड के खिलाफ ही है शायद वो रिकॉर्ड, लेकिन अगर आप इनका वो देखो ना ओवरऑल स्टैट्स, यार ये तो बैट्समैन है, ये पता
वो
नहीं
भी
हम
बैट्समैन है। हाँ पता नहीं बॉलर क्यों बनाया हुआ है, मुझे तो ये आपको याद होगा हमने जब अपनी पॉडकास्ट स्टार्ट की थी उसमें न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का टेस्ट मैचेस हो रहे थे, उसमें ब्रेसवेल को एज अ प्रॉपर स्पिनर खिला रहे थे ये लोग, तो
अच्छा,
ये
अगर
नजदीक
इनकी
से।
आप वो देखो ना T20 का अगर बैटिंग का रिकॉर्ड निकालें तो 31 की एवरेज है इनकी डोमेस्टिक में, 31.8 की, और 135 का स्ट्राइक रेट है, और मैचेस 113 है उस्ताद, तो ये तो पूरा बैट्समैन है। 100 है, 13.50 है इसकी, और बॉलिंग अगर इसकी देखी जाए T20s में तो 113 मैचों में सिर्फ 34 विकेट्स हैं उमर।
देखे ना पता
अच्छा,
नहीं
उन
न्यूजीलैंड की
एक सौ
स्पेल
तेरह
बॉलर्स
मैचों में
का
उन्होंने
प्रॉब्लम है।
बॉलिंग भी सिर्फ 28 इनिंग्स में की हुई है, ये बात भी है एक देखने वाली, तो बिल्कुल ही पार्ट टाइम बॉलर है भाई।
पार्ट टाइम बॉलर है, पता नहीं क्यों यार इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस शो कर रहा है
लेकिन
न्यूजीलैंड
यार
के
उसने
खेल में।
परफॉर्म तो किया है, वो जब से आया है मैन ऑफ द मैच के अवार्ड लेता जा रहा है, लेता जा रहा है, लेता जा रहा है
नहीं लेकिन बॉलिंग में तो उस तरह नहीं लेके गया जो पहले
यार।
वाले
अभी
सीजन में था।
पाकिस्तान के अगेंस्ट उसने रिजवान को हिलने ही नहीं दिया भाई।
अभी 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 ना ये वाली पूछो
हाँ
ना, उससे पहले वाले बात कर रहा हूँ, पहले
हाँ
वाले में
पहले
उसका
मैचेस
इतना
में
इंटरेस्ट नहीं
बॉलिंग
था
में उस
बॉलिंग
तरीके
में।
से उससे नहीं हुआ, लेकिन स्टिल बैक कर रहे हैं भाई उसको। क्या बात है भाई। अच्छा इसके खानदान में इतने हैं, इसके कोई 3 अंकल खेले हुए क्रिकेट, और एक इनके अब्बू
अच्छा
भी क्रिकेट खेले हुए हैं, और इनका कजन तो वो हमें याद ही है डगी ब्रेसवेल, आई थिंक वो पेसर थे न्यूजीलैंड के, तो फैमिली में क्रिकेट चल रही है भाई इनकी।
क्या बात है यार, क्या बात है। जनाब आपकी आपकी कोई आपकी फैमिली में कोई चली है दूर दूर तक कोई क्रिकेटर हो?
यार फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक ही हमारी फैमिली रुक गई, उसके बाद नहीं जा
अच्छा
सकी।
हम तो स्ट्रीट क्रिकेट तक रुक गए यार।
SS98 साहब कहते हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट सौरव गंगुली हैज ऑलरेडी रिजाइंड। अच्छा फॉर्मर वर्ल्ड
ओए ओए
चैंपियन
ओए
रॉजर बिनी इज सेट टू बिकम द नेक्स्ट BCCI प्रेसिडेंट, ऑफिशियल अनाउंसमेंट सून। क्या बात है जी, ब्रेकिंग न्यूज दे दी है SS98 साहब ने। अच्छा
यार, ये तो
एस एस
बड़ी
नाइनटी
अच्छी
एट साहब,
खबर
ये
दी
जो
है।
रॉजर बिनी हैं ये स्टुअर्ट बिनी के फादर हैं, ये वही हैं जो स्टुअर्ट बिनी जो इंडिया के ऑलराउंडर थे, ये भी ज़रा बताएं। ये तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ है उस्ताद।
सही बात है, ये खबर तो बड़ी है लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आई क्यों नहीं है अभी तक। हाँ सही कह रहे हैं, रिश आ गया बयान शयान,
अपडेट आ गई
अपडेट आ गई है लेकिन ऑफिशियल पे नहीं आई, न्यूज पे आ रही है, न्यूज 18 पे। द बिनी माइट लुक अच्छा जी।
अच्छा अब ये भी एक और मज़ेदार बात हो गई है कि BCCI, खबर ये
क्या
भी आ
हुआ?
रही है कि BCCI इज सेट टू लॉन्च 5 टीम विमेन्स IPL इन मार्च 2023। तो पाकिस्तान पाकिस्तान की भी तो लीग इसी टाइम पे ही नहीं होनी जो आपकी PSL होनी है, तो
हाँ
उसके साथ आपकी ये विमेन्स लीग भी होनी है। अब उधर BCCI प्लान कर रहा है कि हम 5 टीमों की IPL लड़कियों की भी करा दें, तो ये तो बड़ा कोई टिट फॉर टैट वाला सीन चल रहा है भाई पाकिस्तान इंडिया का।
टिट फॉर टिट है लेकिन देखते हैं अभी। ये खबर आपने कहाँ सुनी है? अभी
ये
अभी
अभी
आई ये
क्रिक
खबर ही
इन्फो
अभी
पर
आई
आई
है।
है अभी खबर, और
अच्छा
प्रपोज प्लान ये है कि टोटल 22 मैचेस होंगे और हर
अच्छा
टीम में मैक्सिमम 5 ओवरसीज प्लेयर खेल सकती हैं प्लेइंग 11 में।
अच्छा चलो यार, ये तो फिर कंपटीशन आ गया PSL का और IPL का वुमेन वालों का।
नहीं अब तो हमारी विमेंस लीग को तो नाकाम बना दिया जाएगा है। वुडू पार्क कहते हैं अगर कल के मैच में आकिब जावेद आ गया तो फिर मैच जीत जाएंगे। उनका बयान ही काफी है सर, उनके आने की जरूरत नहीं है। SS98 साहब कह रहे हैं
98
यस
ये
फादर ऑफ
फादर ऑफ
स्टुअर्ट बिनी।
स्पॉट बनी।
स्टुअर्ट बिनी जी इंडिया भी खेले हुए हैं, मुझे तो ये बड़े अच्छे एक ऑलराउंडर लगते थे, इनकी गेंद बड़ी स्विंग होती थी, बैटिंग अच्छी करते थे। अभी ये लेजेंड्स लीग भी खेले थे, फिर मुझे ये उस टाइम के याद हैं
अच्छा
जब उमेर वो याद है लाहौर
हाँ हाँ
बादशाह वाला जो टीम थी, क्या नाम था यार
इंडियन
उस
एम्ब्रो
लीग
जो
का, वो जो इंडिया में
इमरान
लीग हुई थी,
नजीर थे ना
ISL
उसमें,
नाम था कि क्या नाम था, जिसमें इमरान फरहत और इमरान नज़ीर
जिसमें
ओपनिंग करते थे। हाँ
हाँ हाँ सही है सही है सही है सही है, मैं समझ गया हूँ, जिसपे सारे कंट्रीज के लीग्स गए थे
हाँ
उसकी बात करें
हाँ
आप?
वो
इंडिया
जिन पे पैसे
हाँ हाँ
शैसे नहीं
बिल्कुल
मिले थे प्लेयर्स को, काफ़ी मसला हुआ था, वो
हाँ
लेजेंडरी
हाँ
लाहौर बादशाह वाली
बिल्कुल।
टीम, उस टूर्नामेंट में स्टुअर्ट बिनी ने भी बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दी थी।
अच्छा राइट।
शफाक अली कहते हैं बाबर आजम को अपने खिलाड़ियों को कहना चाहिए कि भाई मैन ऑफ द मैच मोहम्मद रिजवान और मैं ही लेता रहूंगा, क्या आपको मैन ऑफ द मैच नहीं चाहिए, फिर देखना कमाल हो जाए। यार वैसे मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था जिस तरह एक दफा बाबर ने उमेर दे दिया था किसी और को अपना अवार्ड, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था रिजवान भी दे देगा अवार्ड मोहम्मद नवाज को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एनीवेज जी ये तो चलता रहेगा, और मेरा ख्याल है उमेर साहब की वीडियो भी स्टक हो गई है कि आ रही है उमेर साहब आवाज़ आपको, आई थिंक उनकी वीडियो और ऑडियो में थोड़ा मसला चल रहा है। बहरहाल काफ़ी टाइम हो गया है जी, ऑलमोस्ट 1 घंटा होने वाला है, जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब
बिल्कुल,
नहीं
मेरी
किया।
आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो गई थी जलाल,
हाँ नहीं अब
काफी
आ रही
दिनों
है
बाद
आपकी
ये
आवाज़।
वाला ये वाला इश्यूज हमने फेस किया है 2 दिन बाद। आई थिंक आवाज आ रही है मेरी आपको?
आवाज आ रही है, लेकिन पहले इश्यू होता था, आप डिस्कनेक्ट हो जाते थे. अभी अच्छा ये चल रहा है कि आप एटलीस्ट डिस्कनेक्ट नहीं हो रहे, विच इज़ अ गुड साइन. इवन दो मैंने सुना है आज पाकिस्तान में काफ़ी वो इलेक्ट्रिसिटी का मसला रहा है, लेकिन CPL आई डोंट थिंक इशफाक साहब वो CPL था. CPL तो कैरेबियन प्रीमियर लीग है. चैम्पियंस लीग भी नहीं थी वो इशफाक साहब, वो चैम्पियंस लीग भी नहीं थी, वो लीग थी कोई और नाम था, आई थिंक ISL था, क्या था जो भी था उसका, मुझे कुछ एक्सैक्ट याद नहीं आ रहा. वो कोई और लीग थी, लेकिन उसमें लाहौर बादशाह वगैरह की बड़ा वो इमरान नज़ीर की इनिंग्स भी मुझे कुछ याद आती है. इनविंसिबल लाहौर बादशाह थे उस टाइम के ऊपर, वो बड़ी ज़बरदस्त टीम थी. खैर उमर साहब मेरा ख्याल इजाज़त लेनी चाहिए, 1 घंटा हो गया, और आई थिंक आपको 12 बजे कुछ करना भी था, तो मैंने कहा आपका टाइम भी ज़्यादा ऊपर हो गया.
हाँ हाँ बिल्कुल
डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखें जी आप लोग, सारे सोशल मीडिया के लिंक्स मौजूद हैं, हमारे वेबसाइट को भी ज़रूर चेकआउट करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी चेकआउट करें. हम गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जितने भी मेजर पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे हम अवेलेबल हैं. अभी राबी साहब हम जा रहे हैं तो आप आ रहे हैं, ये क्या बात हुई सर?
यार
हैं
वाकई
हमने
नहीं
तो
यार,
सर
ऐंदा हम लोग ऐंदा हम लोग बता दिया करेंगे ना, पहले ट्वीट वगैरह कर दिया करेंगे। खैर वो तो अभी भी करते हैं, अभी हो रही है ना
यार
ट्वीट।
नोटिफिकेशन तो चली जाती है आई थिंक, लेकिन इसका कुछ और भी सिचुएशन करते हैं. इंस्टाग्राम वगैरह पे भी पहले से कोई स्टोरी
हाँ
वगैरह लगा दिया करेंगे, तो इसलिए आप
स्टोरीज
लोग
वगैरह
जी
लगा
सोशल
देंगे।
मीडिया पे अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपको जल्दी पता लग जाएगा कि जब भी हम लाइव आने लगेंगे, और वो आपको आइडिया हो जाएगा. राबी साहब आप ज़रूर ये अभी हमारी स्ट्रीम जैसी ही ख़त्म होती है आप देखें इसको जी. बांग्लादेश का हमने काफ़ी जिक्र किया है इसमें, तो उसको देखें. ISS 98 साहब देखें, ये हमारी करेक्शन हमेशा कराते हैं. दैट वाज रेबल इंडिया क्रिकेट लीग, बिल्कुल सर. ICL, ICL, बिल्कुल
अच्छा
ICL थी वो, ज़बरदस्त हो गया. वुडू पाक कहते
अब
हैं
वुडो भाई फिर ले फिर उसकी बेइज्जती कर मेरा यहाँ पे मेरे मुंह में कोई और वर्ड आ रहा था लेकिन मैंने कंट्रोल किया। कल क्रिस गेल नहीं खेलेगा, आई मीन खुशदिल।
अब अल्लाह ना करे फाइनल में खेल
बिल्कुल
जाए भाई, ना ही खेले तो अच्छा.
अरे अब मुश्किल ही है वैसे, अब उसका रेस्ट ही है, अब उसका लंबा रेस्ट होगा,
कोई
अभी
बात नहीं
अभी
सर,
ऐसा
राबी साहब कह रहे हैं आई वॉज बिजी सर. कोई बात नहीं सर, जब टाइम मिले आप देखें, कोई ऐसा मसला नहीं. बड़ा अच्छा लगा आपने
बल्कि
कमेंट किया.
फीडबैक दें आप हमें, फीडबैक भी दें हमारे रिव्यूज के बारे में, क्या ख्याल है आपका?
बिल्कुल जी इशफाक अली साहब, बिल्कुल ICL था जी वो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. ज़बरदस्त हो गया जी, मेरा ख्याल है हमारे साथ मज़ा आया आज बात करने का सबसे,
बिल्कुल
और आपसे भी.
सेम
तो ज़रूर
सेम
जी
हियर जलाल।
अपना ख्याल रखें और हमें ज़रूर फीडबैक देते रहें, ट्विटर पर हों, फेसबुक पर हों,
हाँ
यूट्यूब पर हों, ट्विच पर हों, जहाँ पर भी हों फीडबैक ज़रूर दें. और इंस्टाग्राम टिकटॉक भी हमारा ज़रूर चेक करें. हमारे साथ मेरा ख्याल है अब इजाज़त लेते हैं, अपना ख्याल रखें.
सही हो गया जी,
ठीक है
ओके
जी,
जी, अल्लाह हाफिज।
अल्लाह हाफिज़.